अरे तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन जाना ही क्यों है? ये कोई वक्त है जाने का? वापस कब तक आओगी? ये सारी चीजें अक्सर हमें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब सुनने को मिलता ही क्यों है? नमस्कार, मैं हिमांशु जांगिड आपका स्वागत करता हूँ हिमांशुज पॉडकास्ट एंड गिगल रेस्टोरेंट प्रेजेंट हर स्टोरी पावर्ड बाई अभिकृति फाउंडेशन एंड सप्रास फिल्म्स। जरूरी है, बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि ये बात उन घटित घटनाओं के बारे में नहीं है, ये बात है जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो शख्स आज हमारे साथ हैं, शायद उनसे बेहतर इस चीज को हमें कोई नहीं समझा सकता है। आइए स्वागत करते हैं DSP दीपक शर्मा जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर आज हम बात करें हर स्टोरी के बारे में। देखिए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 72 साल हो गए हैं। सर हमने देश के आज़ाद होने के बाद से अब तक हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बदलाव किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे नए लॉज लेके आए हैं हम लोग, और उसी के साथ में हमारी टेक्नोलॉजी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे आ चुके हैं कि आज पहले जितना टाइम पुलिस को बुलाने में लगता था, आज उसका 10% टाइम ही लगता है। आप पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस आपके पास हो जाएगी। संसाधन बहुत हो गए हैं, सारी चीज़ें बहुत ईजी हो चुकी है, आज हर चीज़ को दिखाने का तरीका बदल चुका है। तो कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें जब इजी हो चुकी हैं, लोगों की मेंटलिटी भी बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके होते हुए भी अभी भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी रेप केसेस कम नहीं हो रहे हैं सर। और हम चाहे कितने भी लॉ लेके आ रहे हैं, हम बदलाव तो कर रहे हैं, हम बहुत सारे बदलाव कर चुके हैं, हम बदलाव कर भी रहे हैं, बट क्या आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो कि हम शायद वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ बदलाव मांगती है और हम बदलाव करते हैं तो वो चीज़ें थम जानी चाहिए, बट अगर नहीं थमती है तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो चीज़ें क्या हो सकती हैं?
हिमांशु जी, पहले तो ये जो आपने एक टॉक या शो ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी बदली है। पहले आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले आप मोबाइल नहीं हुआ करते थे, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन होने की वजह से डेफिनेटली जो एक्सेस है पुलिस तक वो बढ़ी है। लेकिन जो चीज़ें टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एक्सेस को बढ़ा रही है, उसी तरीके से वो क्राइम को भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो भी भागीदार है। तो जो आपने बात कही कि कहीं कुछ रह रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, मैं भी इस बात को एज अ पुलिसमैन और एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली मैन, मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये छूट रहा है। और ये जो छूटने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं जो मैं कहता हूँ लास्ट, मैं शुरू में इस बात को कह रहा हूँ, लास्ट में मैं बात कहूँगा, एक एटीट्यूड शिफ्ट की ज़रूरत है। तो वो जब तक एटीट्यूड शिफ्ट नहीं होगा तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चाहे हम ये कितना भी हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ जाएं, कितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, क्योंकि यूज़ करने वाले हम ही हैं,
बिल्कुल
क्राइम करने वाले भी हम हैं, प्रिवेंट करने वाले भी हम हैं। तो ये जो चीज़ है ये तभी हो पाएगी जब एटीट्यूड शिफ्ट होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा।
देखिए सर, मैं एक केस के बारे में बात करता हूँ जो कि शायद मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि एक लड़की के साथ में उसी के घर में उसी के भाई द्वारा उसे मोलेस्टेट किया गया। सर कहा जाता है कि कोई भी इंसान, एक लड़की ही नहीं, कोई औरत ही नहीं, कोई भी इंसान अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। और सर जब ऐसी घटनाएँ हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं कि एक लड़की को उसके घर में मोलेस्टेट किया जा रहा है, तो इन भयावह चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है?
हिमांशु जी, मैं एक छोटा सा एक फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे देश में जो सबसे बड़ी संस्था जो इन क्राइम्स को रिकॉर्ड करती है उसे NCRB कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसी तरीके से राजस्थान में भी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। उसके फिगर्स जो होते हैं वो ऑथोरिटेटिव माने जाते हैं, ऑथेंटिक माने जाते हैं। मैं एक छोटा सा फिगर आपको दूंगा। लास्ट ईयर 2019 में अराउंड 2000 26,000 केसेज ऑफ पॉक्सो, जो आपने नाम सुना होगा, पॉक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक एक्ट आया 2012 में जो आप बात कर रहे थे, बच्चों के खिलाफ होने वाले जो लैंगिक अपराध हैं उनको रोकने के लिए। तो करीब 26,000 केसेस उसके दर्ज हुए, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, महिलाओं की बात तो करी नहीं। उन 26,000 जो उनके पॉक्सो के केसेस थे जिनमें सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, चाहे वो मलेस्टेशन हो चाहे वो रेप हो, उनमें से 24,000 से अधिक, मोर देन 24,000 केसेस में जो ऑफेंडर था, जिसको हम हमारी भाषा में मुलजिम कहते हैं, वो उनका कोई नोन था, कोई रिलेटिव था, कोई फैमिली फ्रेंड था या फ्रेंड था। इट मींस कि उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो उनके ब्लड रिलेटिव थे, सगे संबंधी थे, जिनसे उनका खून का रिश्ता था। अब वो खून का रिश्ता कहीं तक भी जा सकता है, वो जैसे वो उनका कोई चाचा भी हो सकता है, वो उनका मामा भी हो सकता है, वो उनका भाई भी हो सकता है और उनका बाप भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपने अभी उठाई कि भाई घर में ही बच्चे या घर में ही कोई महिला सुरक्षित नहीं है, तो मैं हर आपके सवाल पे एक ही जवाब दूंगा कि एक एटीट्यूड शिफ्ट की ज़रूरत है। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तो ये कहते हैं कि भाई, ये कहा जाता है कि यदि हम भगवान को देखते हैं तो माँ बाप में देखते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं और जिनमें से कुछ केसेस सच्चे भी होते हैं, जहाँ की जो ऑफेंडर है, सेक्सुअल ऑफेंडर है, वो उस लड़की का फादर है। और लड़की नहीं, ये पॉक्सो जो है वो लड़के और लड़की दोनों को कवर करता है। ये चिल्ड्रन, इट्स नॉट स्पेशली फॉर फीमेल चाइल्ड, इट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों को ही कवर करता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंसा, जो ये जो सेक्सुअल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, वो केवल लड़कियों के साथ ही हो रही है, बल्कि वो लड़कों के साथ, यानी छोटे बच्चों के साथ भी हो रही है और घर में भी हो रही है। और इसकी सबसे जो भयावह बात, अलार्मिंग जो बात, वो ये है कि इनमें से अधिकतर केसेस पुलिस के पास आ ही नहीं रहे, बहुत कम केसेस हैं जो कि पुलिस के पास आ रहे हैं। जहां आते हैं वहां डेफिनेटली पुलिस इफेक्टिव एक्शन लेती है। अभी कल की ही बात है, कल एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ एक इस तरीके का केस आया, जो कि उसके ही क्लोज रिलेटिव थे, हमने तुरंत एक्शन लेते हुए और उसमें कार्रवाई करी। आगे भी जैसे जैसे आते हैं हम ऐसे ऐसे कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो ये तो जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो 90% जो कहते हैं ना आइसबर्ग का, जो नीचे होता है, तो वो ये है कि लोग हमारे पास आते ही नहीं। उसके लिए आप जैसे टॉक शो जो भी हैं, या स्कूलों में जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या रैलियां वगैरह निकाली जाती हैं, इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो है कि भाई ये इस बात के लिए लोगों को अवेयर किया जाए कि जैसा भी ऑफेंस हो इस तरीके का, इसको तुरंत बताया जाए। कम से कम यदि पुलिस में ना बता जाए तो अपने घर के जो और बड़े लोग हैं, जैसे कि मान लो यदि आपके कोई सगा संबंधी कोई कुछ कर रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं, यदि स्कूल में कोई टीचर कर रहा है तो आपने घर पे आके अपने बताएं। तो जब तक आप बताओगे नहीं, हो सकता है कि कहते हैं निप इन द बड, यदि हम किसी प्रॉब्लम को शुरू में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यदि हमने उसको ये डिले करते गए या अवॉइड करते गए, है ना, जैसे कि शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग के सामने कोई समस्या आती है वो क्या करता है कि जमीन में अपना गर्दन गड़ा लेता है, घुसा लेता है ना। वो सोचता है कि भाई खतरा टल गया, लेकिन ये खतरा टलता नहीं है, ये खतरा बढ़ता जाता है। तो यदि शुरू में यदि किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो वो बताए। अब वो तो बताएगा नहीं, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मदर फादर हैं या जो भी उसके गार्जियन हैं, इन केस कोई यदि किसी के मदर फादर हैं नहीं, तो जो भी गार्जियन हैं, वो गार्जियन उससे बिल्कुल एक ऐसा फ्रेंडली एक रिलेशन रखें उससे, जिससे कि बच्चा कम से कम इस तरह की बात आके उसको बताए। वो उसको बार बार ये बताएं कि बेटा स्कूल में तेरे साथ, बेटी स्कूल में तेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, या ट्यूशन पे तुम जाते हो वहाँ कुछ ऐसा हो रहा हो, या इवन कहीं किसी दोस्त के यहाँ गए तुम वहाँ ऐसा कुछ हो रहा हो।
गुड टच और बैड टच,
डेफिनेटली हाँ, जो आपने लिया गुड टच और बैड टच के बारे में आप उसको बताएं। तो जब तक आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बताओगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाओगे सिचुएशन को, और वो सिचुएशन बढ़ती चली जाती है। तो डेफिनेटली ये जो मैं एटीट्यूड शिफ्ट की बात कर रहा था ना, तो ये एटीट्यूड शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चों से खासकर ऐसा संबंध, दोस्ताना संबंध रखें कि वो हमें आके सारी बात बता सके। क्योंकि जब तक वो हमें नहीं बताएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। और वो सिचुएशन बढ़ती जाएगी और एक दिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि फिर कई सारी चीज़ें, जैसे में सुसाइड भी आता है, डिप्रेशन भी आता है और वो वहाँ तक पहुँच जाएगी।
सर अभी हमने एक बात की, आपने बताया कि स्कूल्स में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, तो मतलब हम पेरेंट्स के लिए तो चीज़ें हम कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए चीज़ें ओके, वो चीज़ें हम बिल्कुल मानते हैं कि पेरेंट्स को ये चीज़ें समझानी चाहिए, बच्चों से वो करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे छोर पर अगर हम बात करें कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, तो किस किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला सकते हैं, लाइक हम क्या कर सकते हैं इस फील्ड में?
देखिए मेरा ये मानना है कि एक बच्चा जो होता है वो हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाता है और उन 6 दिनों में वो, यदि स्कूल की बात करें, तो एटलीस्ट 6 आवर्स वो एवरेज स्कूल में, यदि वो किसी बस से या ऑटो से जा रहा है तो और एक आप एक घंटा एक आवर और लगा लीजिए, तो यदि वो ट्यूशन जा रहा है तो और भी लगा दीजिए, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज और हर लाइफ, एक तिहाई हिस्सा जब तक वो 12th में पढ़ता है, और 12th में पास होने की एवरेज एज 17 to 18 years या 16 years होती है, है ना, तो 1/3 ऑफ हिज और हर लाइफ एक बच्चा स्कूल में या स्कूल से रिलेटेड जो भी ट्यूशन हो गया या बस स्कूल बस हो गई या कोई पिकनिक हो गया कहीं भी वो गुजारता है, या कोई डांस क्लास ही हो गई उसको भी हम स्कूल का हिस्सा मान सकते हैं, या कोई कोचिंग कर रहा है कोई स्पोर्ट्स की वो भी एक स्कूल का हिस्सा ही हो गए, तो इतना टाइम बच्चा वहाँ पर दे रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो फोकस है ना वो घर पे तो है ही, लेकिन घर के अलावा हमारा फोकस यहाँ भी रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगों को स्कूल्स में बुलाया जाए, जिसमें पुलिस भी हो सकती है ना, आपके ये जो जो महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग होता है एक सरकार का, वो भी हो सकते हैं, एनजीओस भी हो सकते हैं, जो लोग इन इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में भी जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं उनको ये एक कोचिंग है, जैसे कई बार ऐसी कोचिंग्स होती हैं बच्चे, जहाँ बच्चे भी 4-4 घंटे अपना टाइम वहाँ उनको लगता है, स्कूल के बराबर ही वहाँ टाइम देते हैं बच्चे, इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल ना जाके कोचिंग ही जाते हैं, कोचिंग और स्कूल तो नाम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसी उनको एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, उस कमेटी में फीमेल मेंबर्स भी हों और मेल मेंबर्स भी हों, और वो यदि वो इस तरीके से वो भी बच्चों के साथ, ये जैसे एक कंपनीज में एच आर होता है, है ना, जो कि वेलफेयर के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में पूरा लुकआउट करता है, तो इस तरीके से वो वहाँ पे भी लोग हों जो कि आगे से इनका काम ही ये हो कि भाई ये एजुकेशन टीचिंग के अलावा कि भाई वो इस तरह के मैटर्स को देखें, क्योंकि क्या होता है स्कूल्स वाले तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं, वो कहते हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो,
आपके बच्चा, अगर कोई बच्चा है वो स्कूल में आ रहा है पढ़ रहा है, आपका पूरा टाइम स्कूल में दे रहा है, टीचर की निगरानी में है, तो वो टीचर की जिम्मेदारी बन जाता है। एक माँ बाप अपने घर से बच्चे को भेजते हैं तो वो एक भरोसे पे भेजते हैं कि स्कूल जाकर वो टीचर की छत्रछाया में सुरक्षित है, वो वहाँ पर सेफ फील करेगा।
बिल्कुल नहीं, मैं ये कहता हूँ यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपकी जिम्मेदारी वैसे ही बढ़ जाती है, और यदि कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है भाई, आफ्टर ऑल दे आर पेइंग, है ना, एंड पेइंग इन अ हैंडसम अमाउंट, ऐसा भी नहीं है, वो भी ठीक ठाक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए ये हम सभी जानते हैं कि जो यूथ है, ये बच्चे आगे बढ़ के यूथ बनेंगे भाई, जो बच्चा आज 10 साल का है वो कभी 20 साल का होगा। कोई भी देश उतना उन्नत और उतना डेवलप और उतना कहते हैं प्रॉस्परस रिच होता है, उतना हेल्दी होता है जितना उस देश के का यूथ या उस देश के बच्चे होते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये भी एक हिंड्रेंस है, ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया है जिसको कि देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बच्चों के न्यूट्रिशन की बात भी कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में जो सेक्शुअल ऑफेंस वाली जो बात है, ये भी बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा, खासकर मैं मेल चाइल्ड के लिए तो कम है लेकिन फीमेल चाइल्ड के लिए ज़्यादा है ये इशू। तो ये चीज़ें भी, ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम इस चीज़ को देखें, और धीरे धीरे डेफिनेटली अवेयरनेस अब आ रही है, मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी।
सर मैं ये एक चीज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अवेयरनेस के बारे में, अभी मैं आपको एक दूसरे मुद्दे पे लेके आना चाहता हूँ। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड एडल्ट वेबसाइट्स रिसेंटली, उन्होंने कुछ टाइम पहले वो सारी चीज़ें की हैं। वो बैन होने के बाद में हमारी मूवीज़ को सेंसर करने के लिए एक सेंसर बोर्ड है
जी।
लेकिन उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन हुआ या फिर पहले से भी चीज़ें हो रही हैं कि एक वेब सीरीज़ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो शोज को दिखाने का है वो काफ़ी आ रहा है। और सर जितना आप देखोगे या फिर जितना भी अगर हम उसको ऑब्जर्व करें उसमें बहुत ज़्यादा एडल्टनेस दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, रिलेशंस के बीच को, रिलेशंस को एक बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पे। और सर उन सारी चीज़ों पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उन सारी चीज़ों को सेंसर करने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि अब अगर वो चीज़ को कोई बच्चा देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं इससे कि हमने तो एक स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन दिया है कि आप 18 साल से कम के उम्र के बच्चों को दिखाओ ही मत। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास में फोन है वो देख रहा है, हम उसे रोक तो सकते नहीं है। पर अगर कोई बच्चा ऐसा कंटेंट देखता है उसके माइंड पे एक इफेक्ट पड़ता है और ऐसी चीज़ों को फिर वो आगे तक जाके वो चीज़ें असर करती है। क्योंकि जो बच्चा, आप अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं और अगर आप किसी मूवी को देखते हैं तो आपको मूवी की देखी हुई चीज़ें याद रहेंगी, ना कि आपको पढ़ी हुई चीज़ें। तो उसी तरह से ऑनलाइन कंटेंट में जो चीज़ें बच्चे देखते हैं, या फिर बच्चे ही क्या, हमारी उम्र के लोग या फिर हमसे बड़े लोग जो भी हैं, वो जो उस चीज़ को देखते हैं उसका एक माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, वो लोगों के बीच में लाइक एक अलग तरीके की रिलेशंस में खटास पैदा करता है और वो जो हम जिस सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं उसको तार तार करता है वो एक चीज़। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें कितना जिम्मेदार हैं एक इन चीज़ों पर?
देखिए, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। ये जो ओवर द टॉप ये जो नया प्लेटफॉर्म आया है, इसमें सेंसर बोर्ड का अभी तक कुछ भी कोई रूल्स रेगुलेशन अभी इन्होंने नहीं माने। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में, कि कुछ गवर्नमेंट इनको अब अंडर द ईज ऑफ सेंसर बोर्ड इनको लेने वाली है, कंट्रोल में लेने वाली है। डेफिनेटली लॉकडाउन में सभी लोगों ने, खास इन जो OTT प्लेटफॉर्म पे लोगों ने मूवीज़ और जो भी इनके वेब शोज़ हैं वो देखे हैं, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो डेफिनेटली इसका एक नुकसान ये रहा है, जो आपने सही बिल्कुल एक मुद्दा उठाया कि इसमें कई सारी इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं इस तरीके की, जिनसे कि एक नेगेटिव मैसेज एक जा रहा है, खासकर जो क्लोज़ रिलेशंस में उन्हें जिस तरीके के कई सारी वेब सीरीज़ में जो चीज़ें दिखाई गई हैं जिनमें क्लोज़ रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस में को जिस तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय उसमें दिखाया करा गया है, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा
भी बढ़ रही है।
बिल्कुल। तो एज अ पुलिस मैन तो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल दीज। हाँ, यदि आप एक क्रिएटिव, एक आर्टिस्ट की तरह से देखोगे तो एक आर्टिस्ट कह सकता है कि भाई एक आर्टिस्ट को फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक व्यू मेरा ये है कि मूवीज़ कह लो, सिनेमा कह लो, ये नया जो प्लेटफॉर्म आया है, वेब सीरीज़ वगैरह, जो सोसाइटी है उससे ये वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रभावित होती हैं, और वाइसी वर्सा भी होता है कि इन वेब सीरीज़ से सोसाइटी भी प्रभावित होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अनछुआ रहता है। वेब सीरीज़ कोई भी डायरेक्टर वेब सीरीज़ वही बनाएगा जो कि वहाँ के लोग देखना चाहेंगे, डेफिनेटली वही बनाएगा। लेकिन उसको देख के कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको देख के उसकी नकल करते हैं। तो मेरा यही मानना है इसमें, बिल्कुल मैं तो वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट, कि भाई इन पे जैसे सेंसर बोर्ड होता है ऐसे फिल्मों पे या अदर जो भी टेलीशोप्स पे है, इन पे भी सेंसर बोर्ड बिल्कुल अप्लाई होना चाहिए। और जो उनमें वायलेंस दिखाया जा रहा है या जो नहीं होना चाहिए, सेंसर बोर्ड को लगता है ये गलत है, तो वो बिल्कुल इनमें से वो सीन्स वगैरह जो है वो एडिट होने चाहिए, कट होने चाहिए। एक अच्छा मैसेज समाज में जाना चाहिए। मैं मॉरलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मॉरलिटी की बात नहीं कर रहा कि मॉरलिटी के नाम पे आप बिल्कुल चीज़ों को ख़त्म कर दो,
नहीं नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड भी होना ज़रूरी है। हमें ये भी देखना है कि कहीं ये चीज़ हार्मफुल तो नहीं है।
पहले जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता था या फिर जो चीज़ें एक्चुअल में, सर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सही बात है कि हर एक क्रिएटिव अगर कोई पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी सब अपनी जगह पे सही है। बट आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ें चली थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, बट जो आज का एक सिनेरियो बन चुका है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इस टाइम पे हायर पीक पे है इस टाइम पे, और इस पीक टाइम में जो सिनेरियो बन चुका है वो बहुत ख़राब है, वो बदलना चाहिए। और वो किस तरह से बदला जा सकता है?
पहले तो क्या था, सभी लोग एक साथ टेलीविज़न पे कोई भी चीज़ देखते थे, तो टेलीविज़न पे देखने पे तो ये होता था कि भाई घर के सारे लोग देख रहे हैं, यदि कुछ ऐसा आ भी रहा है तो घर वाले देखने भी नहीं देते थे या तो, और इवन जो चैनल्स थे वो भी उसको एडिट कर देते थे कि क्योंकि पूरी फैमिली उस चीज़ को देख रही है। अब इसकी जो सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि कोई भी बंदा उसको अकेला देखता है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप रात को 1 बजे 2 बजे आप उसको देख रहे हो, बच्चे आपके सो गए, आपके घर वाले माता पिता आपके सो गए, आप उस समय पे आप उसको देख रहे हो, तो एक टाइमिंग भी ऐसा होता है। बिल्कुल, मैं आपको साइकोलॉजी के लिए बात बताना चाहता हूँ। एक तो आप टाइमिंग पे ऐसे पे देख रहे हो उसको, फिर आप चीज़ ऐसी देख रहे हो, मतलब
सही बात है।
एक तो टाइम खराब है और फिर आप वल्गर चीज़ें या ऑब्जेक्शनेबल या ऑब्सीन कंटेंट आप देख रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हो गई जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट, इनसे कोई पॉजिटिव तो इम्पैक्ट पड़ता नहीं। मेरा तो कैटेगरी में बताया आपको बिल्कुल क्लियर कट है कि ये तो सब नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस पर कहीं ना कहीं इन पर एक एडिट होने की या रिव्यू होने की ज़रूरत है। और मैंने आपको कहा ना कि टेक्नोलॉजी जो आपने शुरू में जो आपने बात कही थी कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो ये जैसे बून और बेन दो चीज़ें होती हैं, अभिशाप और वरदान, तो ये एक बेन है, ये अभिशाप है टेक्नोलॉजी का। मैं आगे और बताऊंगा आपको कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस इलोपमेंट के, लड़कियों के भागने के हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिनमें कि लड़कियां अक्सर चली जाती हैं, और ज़्यादातर लड़कियों की जो एज है वो बिलो 18 ईयर्स है। कौन सी एज है? बड़ी टेंडर एज होती है, 16 to 18 ईयर्स। 16 to 18 ईयर्स एक एज ऐसी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसमें कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता।
वो मैच्योर
हाँ,
होता है उसके
डेफिनेटली
उसी टाइम पे।
हार्मोनल चेंजेस उसमें आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। उससे पहले क्या होता है कि उसके घर वाले उसके लिए सब कुछ होते हैं, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, वो सोचता है कि यार ये सब दिस इज़ माई वर्ल्ड। लेकिन 16 से 18, 16 to 18, 19, 20, इस बीच क्या होता है, वो घर से बाहर निकलता है, नए नए दोस्त बनते हैं। अब पहले क्या होता था कि आपके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो आप ठीक है, आप ट्यूशन गए, आप कोचिंग गए, आप कॉलेज गए, आप स्कूल गए, बस आपकी दोस्ती वहीं तक है। मोबाइल के आने के बाद क्या हुआ कि आफ्टर स्कूल, आफ्टर कोचिंग, आफ्टर कॉलेज भी आप उन लोगों के कनेक्शन में हो। माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी घर पे आराम से सो रहा है, और वो बच्चा अपना फोन पे, और आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई है ना, वीडियो कॉलिंग भी हो गई, तो बड़ा मतलब ये एक नेगेटिव चीज है। मैं तो बिल्कुल इसमें कैटेगोरिकली कहूँ, कोई मॉरलिटी है उसकी कोई बात नहीं है। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं ना कि हमारे जो समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल खाई की तरफ ले जा रहा है। क्या किसी बच्चे को वीडियो कॉलिंग की जरूरत है, आप मुझे बताइए।
सर ये चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई है, ठीक है, उस काम में तो आ नहीं रही है,
बिल्कुल
और जो चीजें नहीं होनी चाहिए उस तरफ ही जा रही है, और हम उनका सपोर्ट ले रहे हैं, जो चीजें होनी चाहिए उनका सपोर्ट लेके हम गलत दिशा में जा रहे हैं।
भाई ये जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस की हम कहते हैं मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस में काम आता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो कोरोना में तो स्टार्ट हुई, प्री कोविड तो कोई ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो व्हाट्सएप ने, स्पेशली व्हाट्सएप ने जो फीचर स्टार्ट किया, इसको कई साल हो गए, जो वीडियो कॉलिंग जो फीचर स्टार्ट किया है इसको कई साल हो गए। तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप कहीं अपने घर से दूर रह रहे हैं, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आपको अपने बच्चों से बात करनी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भाई ठीक है, आपने घर वालों से थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बात कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसके जो नुकसान हैं वो ये हैं कि उसको जो, खासकर जो हमारे बच्चे हैं ये छोटे छोटे, उसको यूज़ करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, घर वालों से वो कट होते जाते हैं, और फिर वो कई सारे, फिर वो आगे जाके वो सेक्शुअल ऑफेंस में फिर कन्वर्ट हो जाता है।
छोटे छोटे बच्चों को आप फोन दे दो,
जी
माँ बाप नहीं चाहिए, आप फोन दे दो
जी
उन्हें, तो वो उससे खुश
जी जी
हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी का एक नुकसान है, जिससे कि भी सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, तो हम इसके कुछ फायदे ले रहे हैं तो कुछ नुकसान भी हमें उसके उठाने हैं।
इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब एक 17 साल का लड़का या लड़की है, तो अब उन्हें नहीं पता है कि वो, क्योंकि वो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है। अब वीडियो कॉलिंग फीचर की अगर हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हम माँ बाप से तो बात करते नहीं है, क्योंकि माँ
जी
बाप के साथ हम रहते हैं, ठीक है,
जी
तो हम हमारे दोस्तों से बातें करते हैं। उस एज में ना तो हमें सही का पता होता है ना गलत का पता होता है, और जो हार्मोन्स की जो हम बात कर रहे थे उसके, उनके चलते कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वीडियो कॉलिंग पे कुछ गलत कर बैठते हैं, और वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, आगे चली जाती हैं, फिर हैरेसमेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़रूरत है ये सोचने की कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल अक्सर पेरेंट्स भी यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दें, लाइक वो टाइम दें, क्योंकि आजकल मॉम और डैड दोनों जॉब पे जा रहे हैं और सुबह से शाम तक की जॉब करते हैं, उसके एक्स्ट्रा भी बहुत जॉब करते हैं वो लोग, साइड पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि अपने बच्चे को अगर फ़ोन में इंटरेस्ट, उसको फ़ोन दिला देते हैं तो वो वहाँ से हैंडल हो जाती हैं चीज़ें, वो सोचता है कि हाँ ठीक है वो खुश है, बट एक्चुअल में चीज़ें सही होने की बजाय गलत हो रही हैं, क्योंकि वो बच्चा सही यूज़ कैसे करना है वो नहीं समझ पा रहा है, बस वो यूज़ कर रहा है और उसे जो दिखाई देता है वो उसी चीज़ में चला जाता है। सर, जब मैं एक बच्चा था तो जैसे मुझे मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है या फिर बारिश में नहाना अच्छा लगता है, तो मैं बारिश में नहाने के लिए चला जाता, मिट्टी में खेल रहा होता था, तो मेरे पापा आते और मुझे डांटते या थप्पड़ लगाते, तो फिर जो जितनी कड़ी सज़ा मुझे मिलती उतना ही डर मेरे अंदर बैठ जाएगा। और यही सत्य है कि अगर जब कोई हमें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तो हमें सही और गलत का नहीं पता लगता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव होना चाहिए, मतलब कि इतना हार्ड लग, कोई भी रेपिस्ट है वो रेप करने के बाद में जब वो सज़ा भुगत के वापस आता है तो वो फिर से रेप करता है, कोई भी चोर है वो एक बार सजा भुगत काटता है तो उसके बाद आकर फिर से वो चोरी करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब हमारा कितना कॉन्स्टिट्यूशन कितना इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर मतलब क्या बदलाव होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में?
देखिए, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भी लॉज हैं उनकी बात कर रहे हो, लॉज में प्रोविजन्स हैं जिसमें कि यदि आप कोई बार बार ऑफेंस करते हो तो उन ऑफेंस के लिए आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसा है कि भाई कोई कई ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें कि आप चाहे फर्स्ट टाइम करो चाहे ज़्यादा करो तब भी सेम है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें आप बार बार करते हो तो उसके हिसाब से एनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान है। तो लॉज तो हैं और बेसिकली पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लॉज हमने बनाए भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जो IPC इंडियन पेनल कोड जो है जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, वो 1861 में अंग्रेजों के टाइम पे आई थी, उसके ज़्यादातर प्रोविजंस अभी भी रेलेवेंट हैं और कुछ नए प्रोविजंस हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जहाँ तक हम सेक्सुअल ऑफेंस या क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें तो हमने बहुत सारे ऑफेंसेस हमने या बहुत सारे जो नए नए जो एक्ट्स हैं वो हमने बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो बच्ची अपने माँ के गर्भ में आती है। सबसे पहला ऑफेंस है कि यदि हमें ये पता चले कि ये जो गर्भ में जो बच्चा है वो एक फीमेल चाइल्ड है, तो जैसे ही हमें ये पता चलता है वैसे ही हम क्या करते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं और कई बार हम एबॉर्शन कराते हैं। इसको रोकने के लिए हमने PCPNDT एक्ट गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें कि ऐसे सोनोग्राफी सेंटर्स जो ये बता देते हैं कि चाइल्ड का सेक्स क्या है या फीटस का सेक्स क्या है, जो बच्चा घर में पल रहा है उसका सेक्स क्या है, ऐसे सेंटर्स जो ये बताते हैं और एबॉर्शन कराते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। तो अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उसका जो ये डिपार्टमेंट है उनका काम यही है कि भाई वो डिकॉय ऑपरेशन करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ, और अभी 100 से ऊपर इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, उसके लिए हमने एक्ट बनाया हुआ। तो इसके अलावा और भी शुरू से बहुत सारे और भी, जैसे मैं यदि आपको थोड़ा सा बताऊं तो और भी बहुत सारे प्रावधान हैं। पॉक्सो हमने बनाया 2012 में, बहुत रिसेंट एक डेवलपमेंट हमने किया। इसके अलावा जो वर्क प्लेस पे भी जो हरासमेंट होता है लेडीज़ का, उसके लिए उन्होंने 2013 में हमने एक एक्ट बनाया है। अभी आपने हाल ही में बड़ा थोड़ा पॉलिटिकल इशू भी बनाया था, ट्रिपल तलाक वाला, वो भी हमने 2019 में एक एक्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक्ट नहीं बना रहे, हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जा रही है, जैसे जैसे हमें लग रहा है कि भाई इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाने की ज़रूरत है, पहले भी एक्ट थे लेकिन ऐसा लगता है कि स्पेशल एक्ट, जैसे कि अभी अभी हमने रेपिस्ट के लिए, यदि रेप विद डेथ हो जाए कि बच्चे का रेप और डेथ भी हो, तो उसके लिए हमने कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सज़ा का हमने अभी अभी प्रावधान 2018 में हमने किया है। तो स्पेशली तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो थे और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमने नए बनाए हैं और पुराने एक्ट्स में हमने अमेंडमेंट किए हैं, उनको वी हैव गिवन देम मोर टीथ, हमने उनको और कड़ा सख्त बनाया है। तो ये एक, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो आप कह रहे हो ना कि एक्ट एक्ट वाली जो आप या लॉ वाली जो बात कर रहे हो, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी को भी रिफॉर्मेटिव थ्योरीज की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को क्यों सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए। तो ये जो सजा हम क्यों देते हैं किसी को सुधारने के लिए, दो चीजें हैं, एक तो सुधारना और एक डराना। आज मुझे पता है कि यदि मैं ये गलत काम करूंगा तो ये मुझे सजा मिलेगी, तो ये तो हो गया डराना, और यदि मैंने कुछ गलत काम कर दिया और उसके लिए मुझे सजा मिली तो ये हो गया सुधारना, पनिशमेंट देके। तो लॉ तो यही करता है कि यदि किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको सजा देता है, और ये माना जाता है कि सजा देने के बाद, सजा पाने के बाद वो व्यक्ति जिसने वो ऑफेंस किया है वो सुधर जाएगा जब वो जेल जाएगा। ठीक है, अब एक एस्पेक्ट वो जेल वाला भी होता है, वहां उसको किस तरह का एनवायरमेंट मिले। जेल में जाने के बाद वो बंदा सुधर के आता है कि और बिगड़ के आता है, एक एस्पेक्ट वो भी है, क्योंकि लॉ के साथ हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी। हमने कानून तो बना दिया, हमने सजा भी दे दी उसको, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, पुलिस तक आना, पुलिस में आने के बाद कानून अदालत तक जाना, अदालत में ट्रायल होना, ट्रायल में सजा मिलना या छूटना। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तो उसको गिरफ्तार करके चालान कर देती है उसका, लेकिन अदालत में वो छूट जाता है, बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, चलो अदालत से भी उसको कन्विक्शन हो गया, फिर वो जेल जाता है। जेल में जाने के बाद, क्योंकि मैंने बताया ना आपको लॉ का क्या है मोटो, लॉ का मोटो उस व्यक्ति को सुधारना, सजा के द्वारा सुधारना। तो अब वो वहां जाके जब जेल में साल, दो साल, दस साल, बीस साल जब वो गुजार के आता है, उसके बाद उसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड रहता है, वहां उसको कैसा एटमॉस्फियर मिलता है। तो कई लोग सुधर भी जाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं सामने में, चोरी, एक बार चोरी की सजा मिल गई, वो दोबारा चोरी करता है। दोबारा चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जेल गया, कहीं ना कहीं उसको वो एनवायरमेंट वहां दोबारा से वही मिल गया, ऐसे लोगों के साथ ही रहा जिसने सोचा कि अब मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तब मैं दोबारा से उनके साथ मिलके ये काम करूंगा, या फिर जब वो बाहर आया तो उसके पास कुछ और है ही नहीं कमाने के लिए, तो उसने कहा कि मैं दोबारा से वही काम, क्योंकि वो ईजी है उसके लिए, वो कर सकता है। तो इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। कानून हमारे पास हैं, मैं ये नहीं कह रहा कानून नहीं है, कानून हमारे पास सभी हैं, और भविष्य में भी यदि हमें ऐसा लगेगा तो हम इसमें कानून और भी सख्त से सख्त बनाएंगे। लेकिन केवल कानूनों से यदि कोई सुधर जाता, यदि कानून में सारी चीज हो जाती तो कोई अपराध करता ही नहीं, करता ही।
सर रेप के लिए कितनी सजा है, मतलब अगर कोई रेप करता है या फिर ऐसी चीजें होती हैं, मोलेस्टेशन के लिए कितनी सजा है, रेप के लिए कितनी सजा है, या फिर डाउरी जैसी चीजें होती तो उनके लिए कितनी कितनी सजा है?
देखिए कानून एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है कानून। यदि आप कोई छोटा काम करोगे तो उसके लिए छोटी सजा है, बड़ा काम करोगे तो बड़ी सजा है। जैसे कि आपने कहा डाउरी, दहेज, डाउरी वर्ड को हमने बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है, बहुत ज्यादा वाइड कर दिया डाउरी, इसके लिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि उसमें हमने डाउरी को क्रुएल्टी की तरह ले लिया, कि जैसे कि हमने यही नहीं कि दहेज मांगना ही डाउरी नहीं होती, हमने उसमें क्रुएल्टी वर्ड भी जोड़ दिया, क्रूरता, जिसमें कि हम किसी से, हम यदि यदि कोई सास या कोई पति या कोई देवर या कोई जेठ या कोई ननद या कोई और कोई रिश्तेदार यदि किसी महिला को कोई भी ताना देता है, किसी भी प्रकार का ताना देता है, तो वो क्रुएल्टी में आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हमने उस चीज़ को इतना वाइड कर दिया तो उसकी सजा उतनी ही कम होगी, तो उसकी सजा थोड़ी कम है, 3 साल तक की सजा है इस तरीके से। फिर आपने कहा मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन उससे गंभीर अपराध हो गया तो उसकी सजा ज़्यादा है, वो 3 साल से भी ज़्यादा, 7 साल तक है। और जैसा आपने बताया रेप तो डेफिनेटली इट्स अ हीनियस क्राइम, तो उसमें सजा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी है। इसके अलावा जैसे जो एक दो रेप भी दो बात हो गई, एक नाबालिग के साथ और एक बालिग के साथ, तो जो नाबालिग के साथ रेप है उसमें सजा ज़्यादा है। कई बार सजा भी दो तरीके से होती है, भाई एक तो ये कि इतनी सजा होगी, एक ही होता है कि मिनिमम इतनी सजा तो होगी ही होगी। जैसे कि मान लो किसी चीज़ के लिए हमने 10 साल की सजा मुकर्रर करी, अब 10 में कोर्ट चाहे तो 1 साल की सजा दे या 2 साल की सजा दे या मैक्सिमम 10 साल की सजा दे, लेकिन हमने एक कानून ये बना दिया कि इस ऑफेंस के लिए मिनिमम 5 साल की सजा तो होगी ही होगी, इट मीन्स कोई भी कोर्ट उसको 5 साल से कम की सजा नहीं दे सकता। तो कानून उसी हिसाब से होता है, तो डेफिनेटली रेप हीनियस क्राइम है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक की सजा रेप में होती है, और यदि रेप विद मर्डर हो तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट।
सर रेप, रेप के अंदर एक एक्यूज्ड होता है और एक जिस और जो रेप करने वाला होता है जिसके साथ रेप हुआ होता है सर जी। अब जिसके साथ रेप, जिसने रेप किया उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया, वो जेल भी चला गया, उसको सजा भी मिल गई, कोई बात नहीं। हम एक सबसे बड़ा जो एक एग्जांपल है निर्भया वाला ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो उसमें तो फिर भी निर्भया की डेथ हो चुकी हो गई थी, बट अगर मान लीजिए कि डेथ नहीं होती है या फिर कुछ भी और चीज़ें हो जाती हैं, सर जो रेप करता है वो अपनी ज़िंदगी को जी लेता है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को या तो जेल में या फिर अगर कुछ सालों की सज़ा काटने के बाद फिर से जी लेता है, लेकिन जिसके साथ रेप हुआ है उसके लिए वो पूरी जिंदगी भर का श्राप बन चुका होता है। तो रेप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रेप रेप होता है, क्योंकि उसमें जिंदगी जिसके साथ हुआ है उसकी खराब होती है। जैसा कि हमारा टॉपिक है इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, जो चीजें हो चुकी हैं वो चीजें, इट्स अबाउट हर स्टोरी, जिसके साथ हुआ है उसके साथ वो आप बीती हो जाती है, वो जिंदगी भर उसके जहन में बैठ जाता है। एक जो रेप कर रहा है वो आगे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को, जैसा आप बता रहे कि वो सुधार सकता है, चीजें जा सकती है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो अपनी जिंदगी कैसे सुधारेगा उसके लिए? तो मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि रेप के लिए, जो भी रेप है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अब जो नाबालिग वाली जो सिचुएशन है वो अलग हो जाती है, बाकी उसके अलावा जो एक्यूज होते हैं जो नाबालिग नहीं होते हैं, जो उनसे बड़े लोग हैं, उनके लिए कोई बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि डेथ ऑफ वारंट, वारंट ऑफ डेथ निकलता है।
देखो दो चीज़ें आपने कही, एक तो कही जो रेप सर्वाइवर है, जिसके साथ रेप हुआ है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, एक बहुत बड़ा सदमा है ये एक किसी भी महिला के लिए कि भाई जिसके साथ रेप होता है दोबारा मुख्य धारा में आना, दोबारा पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जीना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसमें मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो उसके घर वाले हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नियर एंड डियर हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उसको इस ट्रॉमा से बाहर निकाले। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात करी जाए, स्पेशली गैंग रेप के जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए हम फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस का हमारे यहाँ प्रावधान है। इसके अलावा जो गैंग रेप में जो कोर्ट होता है वो एक्यूज्ड पे फाइनेंशियल या मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाता है, तो वो जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाता है वो भी उस सर्वाइवर को या जो विक्टिम है उसको मिलती है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि उनको मदद करती हैं रिहेबिलिटेशन में, तो सरकार तो इन चीज़ों के लिए बड़ी गंभीर है, और बट डेफिनेटली सोसाइटी को इसमें या फैमिलीज को का इसमें रोल होता है जो कि रेप सर्वाइवर्स को दोबारा से नॉर्मल की तरफ ले जाएं। उनके साथ जो हुआ है उसको वो लोग ही बता सकते हैं, वही लोग फील कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उनके अपने हैं वो उनका थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कही रेप एक्यूज्ड को सजा देने की। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कानून में अकॉर्डिंगली सजा का प्रावधान होता है। कानून में जो सबसे बड़ा जो अपराध माना गया वो मर्डर माना गया है, मर्डर सबसे बड़ा अपराध माना गया है, और मर्डर के लिए जो सब हमने पनिशमेंट का जो कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, उसके बाद जो मर्डर के बाद जो सबसे बड़ा जो अपराध माना गया वो रेप माना गया है, रेप माना गया है, तो रेप के लिए हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हमने करी है। तो ये जो है, जो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी है, क्योंकि कई जगह तो कई कंट्रीज ने तो कैपिटल पनिशमेंट को बैन करने का है, कई जगह जहां कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ में जैसे हमने नया, जो मैंने आपको बात करा था भाई 2019 में और 18 में ही हमने एक नया प्रावधान किया कि जो रेप विद मर्डर है उसमें हमने कैपिटल पनिशमेंट की बात भी हमने करी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ों पे भी गवर्नमेंट सोच रही है और कर भी रही है प्रावधान, और आगे भी इस तरह के प्रावधान होते रहे। और जहाँ तक पॉक्सो के जो ऑफेंसेस हैं उनमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आम आदमी नहीं समझता, लेकिन टेक्निकल चीज़ें इस तरीके से बनाई गई हैं कानून में जिसमें कि एक्विटल के चांस यानी कि बरी होने के चांस बहुत कम होते हैं और पनिशमेंट के यानी कन्विक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह के टेक्निकल चीज़ें हमने हमारे जो एक्ट्स हैं उनमें हमने इंक्लूड करी हैं कि भाई यदि किसी नाबालिग बच्चे के साथ यदि अपराध होता है तो जब भी ट्रायल में जाए कोर्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि उसको सजा मिले, इस तरह के हमने टेक्निकल चीज़ें हमने कानून में डाली हैं। साथ में उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग की भी एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट किया है कि उनकी मॉनिटरिंग की जाए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा इनको, रेप एक्यूज्ड को हो। तो कड़े कानून के साथ साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो केवल पकड़े जाने तक, गिरफ्तार होने तक ही वो सीमित ना रहे, बल्कि उसको सजा भी हो, क्योंकि इन दोनों के बीच भी बड़ा गैप होता है। हम सोचते हैं कि भाई अपराधी पकड़ लिया, खत्म हो गई कहानी, भाई वहाँ कहानी खत्म नहीं होती, कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि अपराधी के गिरफ्तार होने से लेकर और सजा मिलने के बीच में काफ़ी लंबा समय होता है, वो भी एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रोसिक्यूशन का एक पार्ट होता है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने किसी को पकड़ लिया और हम उसको सजा नहीं दिला पाए तो हमारा पर्पस आधा हो गया, पर्पस डिफीट हो गया, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो वो भी एक गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ भी है कि इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस तरह के मॉनिटरिंग की एक अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो गिरफ्तार हो रहा है उसको सजा भी मिले।
सर, एज ए ह्यूमन, हम जो नॉर्मल हम ह्यूमंस हैं वो सच्चाई नहीं जानते, काफ़ी बार हम लोग जो हमें दिखाई देता है और जो एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम हमारे अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि यार इस चीज़ में ये लॉ होना चाहिए, उस चीज़ में वो लॉ होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए, बट एक्चुअल में चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती है। बट एज ए पुलिस ऑफिसर आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रेशर झेलते हैं, तो ऐसे में अगर एज ए पुलिस ऑफिसर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने का मौका मिले, लाइक आपके पास में पावर है, आपसे पूछा जाए कि आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कोई भी एक लॉ जो कि, या फिर कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीज हो सकती है जो एज ए पुलिस ऑफिसर आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये चीज ऐड होनी चाहिए या फिर ये हटाना है हमें?
इसमें मेरा ये मानना है कि कई सारी चीजें, क्या होता है जैसे कई बार झूठे केसेस, फॉल्स केसेस बहुत होते हैं, तो फॉल्स केसेस में क्या है कि हालांकि उसके लिए प्रोविजंस हैं कि फॉल्स केसेस के अगेंस्ट कार्रवाई होने का है, कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें कि कोई यदि फॉल्स केसेस किसी के खिलाफ रजिस्टर कराता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिसमें कि कोई यदि झूठा केस, जैसे कि आपने अभी हम रेप की बात कर रहे थे, तो रेप भी जैसे मान लो दोनों तरीके से है, जैसे मान लो कोई किसी के खिलाफ झूठा दर्ज करा दे तो वो भी एक, उस जिसके खिलाफ कराया गया वो भी एक ट्रॉमा है, उसके लिए भी एक सदमा है। तो मेरा इसमें यह है कि भी इस तरह के कानून इतने बनाए जाएं कि यदि कोई झूठा केस दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी हो, इस तरह थोड़ा इजी किया जाए
फेक फेमिनिज्म के खिलाफ। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे जितने भी लाइक क्राइम्स थे वो बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो चुके थे, तो ऐसी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते हैं कि हम उस लॉकडाउन को हमेशा रखें, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी एक मैटर करती है अपनी जगह पे। बट सर, लॉकडाउन से आपने क्या सीखा कि मतलब जैसे सिचुएशन कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने सालों में कभी लॉकडाउन हमने देखा नहीं है, तो आपने जब लॉकडाउन को फेस किया, आपने देखा कि क्राइम रेट किस तरह से कम हो रही है, तो आपको क्या लगा, आपको क्या सीखने का मौका मिला कि यहाँ से हम लोग किस तरह से आगे जब चीज़ें नॉर्मल होने लगे तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि क्राइम्स थोड़े कम हों?
देखिए, लॉकडाउन में कहते हैं ना भाई हर नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, तो लॉकडाउन में जो एज अ पुलिसमैन पॉजिटिव चीज़ जो थी वो एक तो जैसे आपने बताया क्राइम कम हुआ, दूसरा हमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने का मौका मिला, कई वेलफेयर की चीज़ें हमें करने का मौका मिला क्योंकि वी आर रिलेटिवली फ्री एट दैट टाइम। पुलिस ने, आपने देखा हो कई जगह पे जाके और कई चीज़ें करी, सभी जगह जाके कहीं राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमने करी वहाँ जाके, तो एक हमें भी सोचने का टाइम मिला, कई चीज़ें हमें सोच, जो कि हम अक्सर नहीं सोच पाते, हम बियॉन्ड क्राइम, जैसे पुलिस के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर, उस समय पर लॉ एंड ऑर्डर भी इतना नहीं हुआ क्योंकि पीपल वर विद अस, लोग हमारे साथ थे, हमने जो किया उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, यदि हमने किसी को कुछ सड़क पे हमने किसी की यदि पिटाई भी कर दी तो लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट किया, लोगों ने सोचा कि भाई ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या होता है कि यदि सड़क पे पुलिस किसी को डंडा मारे तो लोग वीडियो बना के वीडियो वायरल कर देते हैं, है ना, वीडियो लोगों ने तब भी वायरल किए, लेकिन उनके पीछे कैप्शन ये होता था कि भाई पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसको ऊपर तक भी जो हमारे उच्चाधिकारी हैं या उन्होंने उसको बड़े पॉजिटिव सेंस में लिया कि भाई पीपल आर हैप्पी विद दिस, कि भाई लोग पुलिस पिटाई कर रही है, तो ये सब चीज़ें हमें ये सीखने को मिला कि भाई जनता आपके साथ दे, यदि जनता के बीच आपकी छवि अच्छी हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक इमेज का, इमेज सुधारने का हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला। और ये भी क्या भाई, हम यदि जनता के लिए कुछ करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो डेफिनेटली जनता हमारा साथ देगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट था। और लोगों के साथ हम जुड़े, एक कनेक्ट, कनेक्शन जो होता है ना, जनरली क्या होती है कि लोग पुलिस से दूर ही रहते हैं, आम आदमी पुलिस से दूर रहता है, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, एक पॉजिटिव चीज़ हमने सीखी।
सर, अभिकृति एनजीओ तो नहीं, लेकिन अभिकृति फाउंडेशन जो है वो एक चीज़ इनिशिएट करना चाहता है, जो जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात भी की थी थोड़ी देर पहले, कि विभीषण मूवमेंट, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि विभीषण मूवमेंट एक्चुअली है क्या, वो क्या समझाना चाहते हैं विभीषण मूवमेंट के थ्रू?
देखिए, जो अभी बात कर रहे थे हम कनेक्शन की, कम्युनिकेशन की, पुलिस के और लोगों के बीच कम्युनिकेशन, हालांकि रिलेटिवली आज से यानी 20-30 साल पहले की बात करें तो बढ़ा है। आज हम खुद जाके लोगों के बीच जाके बात करते हैं, हमने कई सारे कंसेप्ट जुड़े, जिसमें CLG है, कम्युनिटी इंगलाइजनिंग ग्रुप है, हमने पुलिस मित्र भी बनाए हैं, हमने ग्राम रक्षक, अभी नया एक कंसेप्ट आया जिसमें हमने ग्राम रक्षकों की भी। विभीषण मूवमेंट से मतलब ये है कि भाई लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो। हमारा बहुत सारा काम जनता आसान बना सकती है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन हमें मिले। कई बार क्या होते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि यदि हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो पुलिस कहीं हमसे ही 100 सवाल ना पूछे, कहीं हमें ही सस्पेक्ट ना मान लें, इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि यार हम क्यों दें ये। मेरा आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप कोई क्राइम होते हुए देखें, कोई एक्सीडेंट हो जाए कहीं, आप तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें, 100 नंबर पे दें, या फिर आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन है, यदि 100 नंबर नहीं मिल रहा तो लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर आप इजीली स्मार्टफोन में तुरंत आपको टाइप करना है, बस लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर आप, या कंट्रोल रूम का नंबर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर आपको इजीली इंटरनेट पे विद इन अ मिनट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से लें और आप तुरंत कॉल करें, कम से कम आप, और एज अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य भी है। नागरिक होने के नाते अपने कुछ अधिकार हैं, तो कुछ, जैसे कि आपने सब, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द ड्यूटीज़ कि भाई यदि हम कोई क्राइम कमिट होते हुए देख रहे हैं, या हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ और हमने कुछ ऐसा लगा जिसमें कि इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली हम पहले तो हम ये बहाना मार सकते थे कि हमारे पास तो नंबर नहीं है, लेकिन आज हमारे पास सारे नंबर हैं, 100 नंबर तो है ही पुलिस का। यदि मान लो 100 नंबर किसी वजह से नहीं मिल पाए, कई बार इस तरह की कंप्लेंट आती हैं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से अपने स्मार्टफोन पे, सभी के पास स्मार्टफोन है आजकल, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन, से तुरंत आप अपना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर लीजिए या लोकल पुलिस स्टेशन नंबर लीजिए, यानी कॉल है, ठीक, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को बता दीजिए कि भाई ठीक है, आप हमारी आइडेंटिटी, मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय आइडेंटिटी, तो ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी और सूचना भी पहुँच जाएगी। तो बड़ा आसान है ये, एक मतलब आप अपने नागरिक होने का कर्तव्य बड़े आसानी से निभा सकते हैं, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चीज़ों को कैसे करना है।
सर, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कौन सिखाता है कि उसे सांस लेनी है जी, क्योंकि उसे वो ज़रूरत महसूस होती है? कौन सिखाता है कि उसे खाना खाना है? कोई नहीं सिखाता है इन चीज़ों को, वो हमारे जहन से आती हैं। उसी तरह से हमारे जहन से भविष्य में ये आना चाहिए कि गर्ल्स सेफ्टी की बातें ना हो। हम ये एक्चुअली हम बातें ही क्यों कर रहे हैं? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि आज हम यहाँ पर बैठ के इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, हमें शायद हम बदलाव ला पाए इन चीज़ों के थ्रू। और मेरे हिसाब से शायद आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई अच्छे से नहीं समझा सकता था। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बात की, आपने लोगों को एक मैसेज दिया, और आशा करते हैं कि लोगों में इस चीज़ से कुछ बदलाव आए और भविष्य में एक ऐसा वक्त आए जहाँ पर शायद हम ये टॉपिक डिस्कस ही ना कर रहे हों। और यही हमारा उद्देश्य है कि आगे चीज़ें सही हो जाएँ, बैलेंस्ड हो जाएँ, और जो क्राइम्स हैं वो घट जाएं। और एक्चुअल में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है सर, उस ज़िंदगी को जीना सीखिए। लोगों से बस यही कहना है कि आप ज़िंदगी को जीना सीखिए, क्योंकि हम क्राइम्स करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक सोच का फ़र्क हो जाता है, हम नहीं सोच पाते हैं ढंग से, चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका फ़र्क हो जाता है। बाकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप तरीके से जिए, आप सही तरीके से जिए। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए।